लेता है। और फिर 14वें अध्याय में ये प्रकृति के तीन गुणों को स्पष्ट करते हैं अभी, क्योंकि जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात स्पष्ट हो गई, प्रकृति पुरुष की बात स्पष्ट हो गई, तो अब ये सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति क्या है, तो उसको भगवान को पूछते हैं। तो भगवान अब इसके बारे में गहराई से समझाते। भगवान कहते हैं, इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति यानी दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सकता है, ज्ञान से ही सात्विक स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, मेरा स्थान महत ब्रह्म अनंत शांति धाम है, मैं उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। अब देखो इतनी गुह्य बात बताई है यहां पर कि उस महत ब्रह्म में परम धाम में भगवान गर्भ धारण करते। किस बात का गर्भ धारण करते हैं, अर्थात उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प बीज को स्फुरित करता, यानी कहते हैं ना भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प आया, तो ये गर्भ धारण किया उसने। और फिर प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता। कई लोग हमें यह सवाल पूछते हैं कि भगवान को परम पिता क्यों कहा, परम माता क्यों नहीं कहा, है तो वो मात पिता, फिर परम पिता क्यों कहते हैं, गॉड फादर क्यों कहते हैं, गॉड मदर क्यों नहीं कहते। उसका जवाब भगवान देते हैं, क्योंकि मैं बीज को स्फुरित करने वाला हूं इसीलिए मैं पिता हूं, और प्रकृति को मदर अर्थ नेचर उसको माता कहा, चाहे नदी हो नदी भी माता, और इसलिए सारी नदियों के नाम देखो भारत के अंदर माताओं के नाम से है। पृथ्वी को भी माता कहा, भारत माता कहा, ये धरनी को भी माता कहा, है ना। भावार्थ ये है कि प्रकृति इस गर्भ को धारण करने वाली माता हो गई और परमात्मा उस बीज को स्फुरित करने वाला पिता हो गया, इसलिए गॉड फादर है, परम पिता है और प्रकृति माता है। है वो दोनों ही, मात पिता दोनों ही है, पालना वही करता है। इसलिए पहले ही कह दिया मेरी कार्य प्रणाली कैसी है कि मैं सबका पालन करता जरूर हूं, लेकिन मेरी उनमें आसक्ति नहीं है, मोह माया नहीं, इसलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। फिर भगवान प्रकृति के तीन गुणों को स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रजो और तमो, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। सत्व गुण क्या होते हैं, तो कहा निर्मल, अभी उसकी पहचान कराते हैं। एक यार्डस्टिक दे देते हैं हमको अपने जीवन को देखने के लिए कि मुझमें कौन सी प्रकृति है, सात्विक है राजसिक है या तामसिक है, तो उसकी विशेषताएं बताते हैं कि निर्मल यानी प्योर, बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाला और निर्विकारी होने के कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधता है, वो सात्विक प्रकृति है। रजोगुण किसको कहते हैं, जहां कामनाएं हैं आसक्ति से उत्पन्न मानो, वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधता है, रजोगुण है। और तमोगुण क्या है, अज्ञान से उत्पन्न होता है जो आत्मा को आलस्य निद्रा और प्रमाद में बांधता है, वो तामसिक गुण है। जहां आलस्य निद्रा प्रमाद अज्ञानता है, तो अपने आप को देख सकते हैं शायद सात्विक और राजसिक के बीच में होंगे, तभी तो यहां बैठे ज्ञान को प्राप्त करने के, बुद्धि को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो इसीलिए तामसिक प्रकृति वाला तो यहां बैठ नहीं सकता है, है ना, वो तो भाग जाएगा, है ना। इसलिए यहां जो बैठे हैं सात्विक में जाने के प्रयत्नशील है, पुरुषार्थी है। और उसको स्पष्टीकरण करते हैं कि तमोगुण की बुद्धि कैसी होती है, तमोगुण की वृद्धि से अज्ञानता आलस्य अलबेलापन प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं और पुनर्जन्म भी पशु समान, प, पशु योनि में नहीं जाता है, पशु समान नरक समान जीवन होता है। यह तमोगुण की वृद्धि जब होती है तब की बात है। अच्छा, जब रजोगुण की वृद्धि होती है उसमें क्या विशेषता है, उसकी क्या निशानी है? कितना भगवान ज्ञान देता है, एक के बाद एक अर्जुन के वो सवालों का जवाब स्पष्ट करते। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्याधिक आसक्ति, स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ तथा अशांति एवं इच्छाओं का उदय होता है। ये चाहिए वो चाहिए उदय होता है। रजोगुणी कर्म का फल है दुख की अनुभूति। रजोगुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाला मनुष्य कर्म बंधन होने के कारण पुनर्जन्म में जीवन बंधन का ही अनुभव करता है। और सत्व गुण क्या होते हैं? जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रिय में ज्ञान के प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह फैलता है तो सत्व गुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। सत्वगुणी कर्म से अर्जित फल सात्विक, निर्मल और ज्ञान युक्त होता है। और सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाले की श्रेष्ठ गति होती है। तो तीनों की गति स्पष्ट करती है, है ना? इसलिए कहा यहां आना भी एक भाग्य है। जब आपका सात्विक गुण का उदय होता है तभी ऐसे माहौल में आने का एक सौभाग्य मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है। आप लोगों में से ऐसे कई होंगे कि आपके साथ आने वाले और भी थे लेकिन लास्ट मोमेंट कोई काम आ गया, कैंसिल करना पड़ा। और आप में से कई ऐसे भी होंगे, आने वाले नहीं थे, किसी और की टिकट पर आ गए। क्योंकि जिसके वो सात्विक गुण का उदय होना है, हाँ? अस्पताल चले गए, हाँ कुछ लोग बीमार पड़ गए, ऐसा यहां आने वाले थे बीमार आकर के बीमार पड़ गए। अच्छा, लेकिन वो कहानी मुझे याद आती है कि एक बार नारद जी जो थे ना, घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने पूछा भगवान से, भगवान क्या देख रहे हो? भगवान कहते ये मेरी खास डायरी है, स्पेशल डायरी है। तो इस खास डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा इसमें कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद कर, जो मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी बड़े खुश हो गए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता है। भगवान भी मुस्कुराए, हां तेरा नाम तो सबसे पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई, कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा तो खुद का नाम पहला नंबर था, बड़ा खुश हुआ। आगे देखने लगा भगवान ने किस किस का नाम लिखा है जो उनको बहुत याद करते। ढूंढने लगे इसमें हनुमान जी का नाम कहां है, तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना डायरी, भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को। तो देखा हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे। वहां जाने के बाद नारद जी ने हनुमान जी से कहा ये ढोंग सारा बंद करो। कहा क्यों? कहा अभी मैं भगवान की खास डायरी देख करके आया हूं जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो भगवान को बहुत याद करते हैं, और आपका नाम तो डायरी में था ही नहीं। अब नारद जी की बातों को सुन करके हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। कहने लगे मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद करता, मैं उसके दिल में रहता। नारद जी क्या कहते? फिर चले वहां से, घूमते घूमते फिर भगवान के पास पहुंच गए तो देखा भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने भगवान को पूछा ये डायरी तो अलग लग रही है, ये कौन सी डायरी है? तो भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। कहीं पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। इसमें किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। तो नारद जी ने सोचा भगवान किसको याद करते हैं, देखे तो सही। तो कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और नारद जी का नाम ही नहीं था। भावार्थ ये कि दुनिया में भगवान को याद करने वाले बहुत है, लेकिन भगवान जिसको याद करे, कोटों में कोई कोई में भी कोई ऐसे भाग्यशाली आत्माएं आप हो। तो आप सबका नाम कौन सी डायरी में है पता है? पर्सनल डायरी में आपका नाम है ना? लेकिन अब यहां से जाकर के उन लोगों को ये नारद जी वाला काम नहीं करना कि जो यहां नहीं पहुंच पाए उनको कहो कि भाई भगवान का प्यार तो है ही नहीं तेरे साथ में। नहीं, उसको भी जाकर के ये बातें सुना करके उनका भाग्य भी ऐसे बनाए कि दूसरी बार की जब जूरिस्ट विंग की ये कॉन्फ्रेंस हो उसमें कम से कम वो पहुंच जाए। ये कार्य करेंगे ना आप, तो इसको कहेंगे महान भाग्यशाली आत्माएं। तो इसलिए सात्विक गुण वाली आत्माएं जो होती है ना, वो वही होती है जिसको भगवान याद करे, ऐसे महान भाग्यशाली आत्माएं हो। तो इसलिए कहा कि आप इतने भाग्यशाली हो, तामसिक गुण वाले नहीं है तो इसके लिए तो मुबारक। रजोगुण की कुछ बातें रह गई है, लेकिन अब यहां ज्ञान सुन करके वो बातें भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे। और सात्विक गुण यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश से अपनी कर्मेंद्रिय को प्रकाशित करो, उस प्रवाह को फैलाओ और सात्विक प्रकृति के बन जाए। और फिर भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं, उसको स्पष्ट करो। तो भगवान कहते गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। वे समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहते हैं। कोई कुछ भी कहे उससे विचलित नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्मस्थिति में स्थित रहे, निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख में संतुलित मन स्थिति वाला, समान दृष्टि और भाव वाला, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करता है। कोई कुछ भी कहे अविचलित, विचलित नहीं हो जाता, दुखी नहीं हो जाता है, वह तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर हो जाता है। उसको कहा गुणातीत व्यक्ति। और फिर भगवान से और एक सवाल किया कि किस विधि से गुणातीत बनते हैं। भगवान कहते गुणातीत बनने की विधि भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव रख अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी माना एक की भक्ति, एक में अपने ध्यान को लगाना, व्यभिचार माना बहुतों को याद करना, अव्यभिचारी माना एक को याद करना। तो अव्यभिचारी भक्ति योग, भक्ति माना प्रेम, भक्ति योग के द्वारा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है, वह मेरे सानिध्य में आ जाता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और परम सुख परम आनंद का आश्रय हूं। तो वो उस प्रवाह में आ जाते हैं, उस ओरा में आ जाते हैं, तो वो गुणातीत बन जाता है। और फिर पुरुषोत्तम योग परम 15वें अध्याय में भगवान बताते, अब यहां और गुह्य बातें बताते हैं भगवान कि ये सृष्टि कैसे कल्प